तो ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है कि संसार में ईश्वर को अवस्थित देखो। अभी तक हम ईश्वर को अवस्थित नहीं देखते थे और अब ईश्वर को अवस्थित जब देखा जा रहा है तो यह जो ज्ञान है यही त्याग है। सबके भीतर में भगवान विराजमान है, यह ज्ञान ही त्याग है और इस त्याग के द्वारा संसार की वस्तुओं का उपभोग करो। किसी के धन का लालच न करो, धन भला किसका है, भुंजी था भोग करो। यह शब्द मुझे एक घटना का स्मरण करा देता है। इंगरसॉल बड़े नास्तिक विचारक हुए अमेरिका के, बहुत प्रसिद्ध थे अपने जमाने में, स्वामी विवेकानंद के समकालीन। स्वामी विवेकानंद से एक बार इंगरसॉल की भेंट हुई। इंगरसॉल ने विवेकानंद के भाषणों को पढ़ा था जो वहां के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। आप तो जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद ईसाई मिशनरियों पर बड़े रुष्ट थे। जिस प्रकार से अमेरिकन ईसाई मिशनरियों ने और इंग्लिश ईसाई मिशनरियों ने दुष्प्रचार किया था भारत के संबंध में, अमेरिका इत्यादि देशों में, इसके कारण किसी का भी रुष्ट होना बहुत ही स्वाभाविक है। वह प्रसंग हम लोग आखिरी दिन शाम को ले लेंगे, पर मैं यह कह रहा था कि इंगरसॉल ने स्वामी विवेकानंद के भाषणों को पढ़ा था। एक दिन भेंट होने पर इंगरसॉल ने कहा, वेल स्वामी, हैड यू कम हियर 50 years ago, यूड हैव बीन पेल्टेड टू डेथ। अगर 50 साल पहले आप यहां आकर के ऐसी बात कहते तो लोग पत्थर मार मार करके आपकी हत्या कर डालते। आपकी बातें इतनी तीखी हैं। स्वामी जी ने मुस्कुरा करके पूछा, तीखी तो हैं पर सत्य नहीं है क्या? तीखा सत्य भी सहन नहीं होता है, इंगरसॉल ने कहा। आपने जिस सत्य का उद्घाटन किया बहुत तीखा, और जिस ढंग से सत्य को रखा वह बहुत तीखा। और फिर उसके बाद इंगरसॉल और स्वामी जी में बातचीत होती है। इंगरसॉल ने विनोद करते हुए कहा कि क्या बात है, आप तो धर्म इत्यादि की बात करते हैं, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, मैं तो संसार को एक रसीले फल के समान मानता हूं और बस इस रस का आनंद लेना चाहिए, यही मैं मानता हूं। स्वामी जी ने हंसकर के कहा कि हम भी तो यही मानते हैं, हम भी मानते हैं कि यह संसार एक रसीले फल के समान है और इस रस का आनंद लेना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। इंगरसॉल ने चकित होकर के कहा, अच्छा तो आप भी संसार को एक रसीले फल के समान मानते हैं? स्वामी जी ने कहा, हां। तब फिर आपकी बात में और हमारी बात में अंतर क्या हुआ? स्वामी जी ने कहा कि अंतर एक यह है कि तुम केवल इतना जीवन ही मानते हो कि बस यही सब कुछ है और इसलिए उस रस का, वह जो फल है उसका रस निकालने में तुम्हें बहुत हड़बड़ी रहती है कि जाने कब यह जीवन दीप बुझ जाए, रस पूरा निकले या न निकले, आपा धापी में तुम रस निकालते हो, उसका उपभोग करते हो। पर हम यह जानते हैं कि यह जो जीवन है वह अनंत है, असीम है। केवल यही जीवन मात्र हमारी सीमा नहीं है और इसीलिए हम आनंद के साथ उस रस का उपभोग करते हैं, कोई आपाधापी नहीं, एक बूंद भी हम नहीं छोड़ते हैं, पूरा रस निकाल लेते हैं। यही अंतर है, यह भुंजी था। हमारा अध्यात्म ज्ञान वह भी कहता है कि संसार का रस निकालो, उसका उपभोग करो। और जो भौतिक वादी हैं वे भी यही कहते हैं पर अंतर यही है, भौतिकवादी भाग रहा है कब यह जीवन हाथ से निकल जाए, अध्यात्मवादी कहता है जीवन हाथ से निकलेगा कहां, जाएगा कहां, हम तो वही अनंत स्वरूप हैं, यह उसके भीतर विश्वास। तो यहां पर कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य सिद्धनम, इस ज्ञान रूपी त्याग के द्वारा इसका उपभोग करो, मां गृध लालच मत करो, धन भला किसका है। दूसरे मंत्र में कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यह सिद्धांत का प्रयोग है। पहले मंत्र में ज्ञान तो दूसरे में कर्म, पहले में सिद्धांत तो दूसरे में प्रयोग या आचरण, पहले में विचार तो दूसरे में आचार, ये दोनों साथ साथ चलते हैं और साथ साथ दोनों को चलना चाहिए। कोरा सिद्धांत भी किसी काम का नहीं और हम केवल कर्म ही करते रहें उसके पीछे ज्ञान का आधार न हो तो वह भी किसी काम का नहीं, वह केवल श्रम होता है। तो दोनों को मिलकर के चलना चाहिए, यह यहां पर बताया गया। 100 साल तक जीने की इच्छा करो, कुर्वन्नेव इह काम करते हुए ही, कर्म करते हुए ही जिजी विशेष इच्छा करे, शतम समाह 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इच्छा करे इसका मतलब कि उसके भीतर में जिजीविषा बनी रहे। मनुष्य में जिजीविषा कब बनी रहती है? जब उसे लगता है कि उसका जीवन सार्थक है। जिस दिन मनुष्य को ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन अर्थहीन है, उस दिन जिजीविषा समाप्त हो जाती है। जैसे मनुष्य अवकाश प्राप्त हो गया, उसके बाद उसे लगने लगता है कि मैं बेकार हो गया हूं, मैं किसी काम का नहीं रहा। पर यहां पर यह बताया जा रहा है कि मनुष्य मरते दम तक काम का है, अपने लिए काम का है, समाज के लिए काम का है। यदि जीवन में उसके यह ज्ञान रहे, इस ज्ञान के साथ जीवन में कर्म करता रहे, तो उसके लिए तो जीवन है ही सार्थक, समाज के लिए भी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो इस मंत्र के द्वारा मानो 2 प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान। एक तो समस्या है प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, यह आजकल की समस्या है, पहले भारत में यह समस्या नहीं थी, यह समस्या आयातित है, वृद्धावस्था की समस्या। बाहर के देशों में मनुष्य वृद्ध हो जाता है, स्वाभाविक ही अपने परिवार वालों के लिए किसी काम का नहीं रहता है, परिवार वाले भी ऐसा सोचते हैं, वह खुद भी सोचने लगता है, तो एक वृद्धावस्था की समस्या है। दूसरी समस्या है प्रॉब्लम ऑफ लेजर, मनुष्य के पास अवकाश है, कैसे समय बिताए, तो वृद्धावस्था की समस्या और समय काटने की समस्या। तो यहां पर दोनों समस्याओं का समाधान, तो कहा गया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं त्वयि नान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। नरे नर माने शरीर का अभिमानी, जैसे मैं देहाभिमानी हूं, मेरे शरीर है, मैं शरीरवान हूं, मैं देहवान हूं, ऐसा जो शरीराभिमानी देहाभिमानी जीव है उसके लिए कर्म करना छोड़कर के दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल इसी उपाय के द्वारा तुम इस बंधन को काट सकते हो। यहां पर यही कहा गया कि तुम कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो 100 साल तक या परमायु। भारत में आजादी के समय यहां की औसत आयु थी 29 वर्ष की, अभी देखिए 40 वर्षों में यहां की औसत आयु 54 वर्ष की हो गई, धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाए। बाहर के देशों में अमेरिका में इंग्लैंड में 72 से 74 तक की औसत आयु है, तो अगर इसे बढ़ा करके और भी ले जाया जाए 80 वर्ष तक का, तब तो समझ लीजिए यह जो वेदों में कहा गया है कि 100 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति होता है तो हम उसके करीब ही पहुंच जा रहे हैं। औसत आयु यदि 75 वर्ष की पहुंच गई तो इसका मतलब है कि कुछ लोग 100 वर्ष के होंगे ही। पुराणों में जो हजारों वर्ष की बातें लिखी हैं उनको आप गणित की दृष्टि से मत देखिए। वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ जो ऋग्वेद है वहां पर भी मनुष्य की परम आयु को 100 साल ऐसा कहा गया है कि 100 वर्ष तक रहेगा। और फिर छांदोग्य उपनिषद में कल जैसा मैंने कहा यह कहा गया कि आयु का सैकड़ा 116 वर्ष का, हो सकता है कोई 125 साल जीवित रहे। यह जो आयु का सैकड़ा है वह है 116 वर्ष का, 24 साल अध्ययन, फिर 44 साल खूब कर्मयोग किया गृहस्थाश्रम में, और फिर उसके बाद दूसरों के लिए जीवन बिताया 48 साल 24 साल अध्ययन, 44 साल एक प्रकार से अपने लिए जीवन बिताया, परिवार के लिए बिताया, समाज के लिए तो रहेगा ही पर प्रमुखता रहेगी अपने लिए जीने की, और बाकी 48 साल का जो जीवन है उसमें प्रमुखता रहेगी दूसरों के लिए जीने की। यह इस प्रकार से बंटवारा उपनिषद के अनुसार। तो यहां पर यही कहा गया कि तुम नर हो, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, और इस प्रकार यह जो कर्म लिप्त नहीं होता है, डरते क्यों? कर्म तुम्हें लिप्त कर लेगा या डर क्यों? कर्म में चिपकने की कोई बात नहीं है, कर्म में वह गुण नहीं है चिपकने का, कर्म कभी नहीं चिपकता, वह कर्म तो आसक्ति के कारण चिपकता है। कि जैसे हम कर्म करेंगे तो मनुष्य कहता है कि मैं इससे चिपक जाऊंगा, तो आसक्ति के कारण चिपकता है। न कर्म लिप्यते नरे, कर्म का लेप नहीं होता, वह तो आसक्ति होती है, इसके कारण कर्म का लेप दिखाई देता है। पर वस्तुतः कर्म में लेप करने का गुण नहीं है, हमारी अपनी आसक्ति है जो कर्म को लेपता प्रदान करती है। तो यहां पर यह कहा गया कि क्यों डरते हो, 100 वर्ष तक जब तक जियो खूब आनंद से कर्म करो, यह यहां पर संकेत किया गया। और उसके बाद कहते हैं कि यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो असुरिया नाम ते लोकाह अंधेन तमसावृताह, असुरिया लोकों को, यहां पर भगवान भाष्यकार इसका अर्थ बताते हैं कि देवापि, ये जो देवता हैं देवलोक हैं ये भी भोग योनियां हैं, वहां पर भी मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, वहां भी देहबोध बना रहता है। भले देवलोक में सब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं परंतु शरीर बोध वहां पर भी बना हुआ है, और इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर के यह जो जिसे हम कहेंगे स्थावर जंगम, यह जो भिन्न भिन्न प्रकार की भोग योनियां हैं, ये सब के सब गहरे अंधकार से भरे हुए हैं। शंकराचार्य का यहां पर यह अर्थ है, उसकी व्याख्या उन्होंने की है, अंधेन तमसावृता माने जहां पर द्वैत भाव है वह तो घोर अंधकार है ही, चाहे वह देवलोक हो चाहे अन्य कोई भोग योनि हो। तो असुरिया नाम ते लोकाहा, तो उसमें वे कहते हैं लिखते हुए देवादय अपि असुराहा, ये देवादि भी असुर ही हैं। अज्ञान की दृष्टि से देवों को भी ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, वे भी भोग योनियां हैं और इसलिए वे भी असुर ही कहलाने लायक हैं। तो ऐसे लोगों को मनुष्य जाता है शरीर छोड़ने के पश्चात, यदि उसको यह ज्ञान नहीं हुआ, यदि प्रथम मंत्र में कहे गए सिद्धांत को दूसरे मंत्र के अनुसार व्यवहार में उसने नहीं उतारा तो कहा कि वह आत्मघाती है, उसने आत्मा का घात कर लिया, उसके भीतर में जो यह दिव्य आत्मज्ञान भरा हुआ है उसकी उसने उपेक्षा कर दी, तो मरने के बाद वह भोग योनियों में जाएगा, और भोग योनि को कह दिया वह गहरे अंधकार से भरी हुई योनि, कोई भी लोक हो चाहे वह ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, पर कहा कि जहां पर द्वैत है, जहां पर शरीर का भान है, वह सबका सब गहरे अंधकार से भरा हुआ लोक है, ऐसा कहा। अच्छा, आत्मघाती होता है क्या मतलब? कह दिया गुरुजी ने उपदेश करते हुए कि आत्महनोजना, मरने के बाद वह उन लोकों में जाता है जहां पर आत्मघाती लोग जाते हैं। एक आत्मघात का तो मतलब हम जानते हैं, आत्महत्या करना। तो क्या वह आत्महत्या करता है? यहां पर कहते हैं कि हां, आत्मा जो हमारे भीतर में विद्यमान है उसको न जानना, उसकी उपेक्षा कर देना, यही तो उसकी हत्या करना है। कि जो हमारे भीतर दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान की हमने उपेक्षा कर दी, वह मानो उसके हत्या करने के समान है। यह यहां पर शंकराचार्य हमारे समक्ष अर्थ रखते हैं। अच्छा, तो जिस आत्मा की हत्या कर दी ऐसा कहा, वह आत्मा कैसा होता है जरा देख तो ले, उसका स्वरूप क्या है, किस आत्मा की वह हत्या करता है, कौन सा आत्म तत्व मेरे भीतर में भरा है जिसकी उसने हत्या कर दी। तो यहां पर इन कुछ श्लोकों में, 5 श्लोकों में आत्मा के संबंध में और जिस व्यक्ति ने उस आत्म तत्व को जान लिया उसके संबंध में वर्णन है। तो उसे देखें, तो 4th मंत्र में कहते हैं, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद देवाः आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। ये थोड़े श्लोक टेक्निकल हैं, परंतु इतने कठिन नहीं कि हम समझ न सकें। थोड़ा सा उपनिषद का आधार पहले से बना रहे, आत्म तत्व के संबंध में आधार बना रहे, तो ये बातें समझने में दुरूह नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं अनेजत, अनेजत उसमें कंपन नहीं है, एजन एजने कंपन शीलता, अनेजत उसमें कंपन शीलता नहीं है, वह हिलता डुलता नहीं है। जिस आत्म तत्व के संबंध में तुम्हें बताना चाहता हूं वह आत्म तत्व ऐसा है, यह गुरु कह रहे हैं शिष्य से। तो अनेजत उसमें कंपनशीलता नहीं है, एकम वह एक ही है। कितने लोग उन लोगों के भीतर में अलग अलग आत्म तत्व, कहते नहीं, वही एक ही आत्म तत्व जो भी दिखाई देता है सबके भीतर में भरा हुआ है। फिर कैसा है? मनसो जवीयो, वह मन से भी अधिक गतिमान है। अभी तो कहा कि उसमें कंपनशीलता नहीं है और अभी कहा जा रहा है कि वह मन से भी अधिक गतिमान है, तो दोनों में तो विरोध सा दिखाई देता है। एक ओर कंपन का अभाव और दूसरी ओर चलायमानता, वह मन से भी अधिक गतिमान है। नैनद देवाह आपनुमन पूर्वमर्शत, ये जो देवता हैं, देवाह देव माने द्योतनवताम, जो प्रकाश देते हैं, तो इंद्रियों को भी देवता कहा गया है। ये इंद्रियां प्रकाश देती हैं, इसीलिए आप पढ़ते हैं शास्त्रों में कि प्रत्येक इंद्रिय का एक एक देवता है, अधिष्ठात्रा देवता है। जैसे यह जो हाथ है तो यह जो हस्तेंद्रिय है इसका अधिष्ठाता देवता इंद्र है, यह जो आंख है अधिष्ठाता देवता सूर्य है। तो ऐसे हर इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता हमारे यहां माना गया है। तो यहां पर यह कहा गया कि नैनद देवाह, ये जो देवा माने ये इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, नैनद देवाह आपनुवन, ये इंद्रियां उस आत्म तत्व को पा नहीं सकी, आंखें देख नहीं सकी, कान सुन नहीं सके, और इसी प्रकार ये जो अन्य 3 ज्ञानेन्द्रियां हैं उन 3 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो सका। इसका मतलब कि ये 5 ज्ञानेन्द्रियां उस आत्म तत्व को पकड़ नहीं पाई। यह आत्म तत्व इन ज्ञानेन्द्रियों की पकड़ से बाहर है। क्यों बाहर है? पूर्वमर्शत, वह आगे गया हुआ है। जब इंद्रियां पकड़ने के लिए गईं, तो वह आत्म तत्व और भी आगे निकल गया मालूम पड़ता है, और इस प्रकार ये इंद्रियां पकड़ नहीं पाई। यह कहने का बड़ा सुंदर तरीका है, इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, और वह कैसा है? अत्येति तिष्ठत, तिष्ठत वह तो खड़ा है, चलता नहीं है आत्म तत्व। तद धावतो अन्यान अत्येति, और बाकी चीजें दौड़ रही हैं, इंद्रियां दौड़ रही हैं, और वह खड़ा हुआ है, तो वह खड़ा होकर के भी इन भागती हुई चीजों को पार कर जाता है। आप देख रहे हैं भाषा कैसी है उपनिषद की, आत्म तत्व खड़ा हुआ है, स्थिर है, बाकी चीजें भाग रही हैं, परंतु आत्म तत्व खड़ा होकर के भी भागती हुई चीजों को पार कर जाता है। यह है तद धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन अपह मातरिश्वादधाति, उसके रहने के कारण, उसकी अवस्थिति के कारण मातरिश्वा कॉस्मिक एनर्जी, यह जो मातरिश्वा है कॉस्मिक एनर्जी है, तो यह अपह दधाति माने यह जो जीवों में कर्म की प्रेरणा, यह जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणा, इन प्रेरणाओं को प्रदान करता है कौन? मातरिश्वा या कॉस्मिक एनर्जी, यह इसका अर्थ हुआ। अब इसको समझने की चेष्टा करें। पहला तो यह लगता है कि यहां पर कैसे विरोधी गुण प्रदर्शित किए गए हैं आत्म तत्व के संबंध में, कि वह चलता नहीं है, फिर कहा गया वह चलता है, इसके बाद के मंत्र में यही कहा गया, दोनों को एक साथ ले लें तो बाद के मंत्र में कहा तदेजति तन्नयेजति तद्दूरे तदुअंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, कहा गया तदेजति वह आत्मतत्व कंपनशील है, तन्नयेजति उस आत्मतत्व में किसी प्रकार का कंपन नहीं है, तद्दूरे वह बहुत दूर है, तदुअंतिके वह सबसे समीप है, तदंतरस्य सर्वस्य वह सबके भीतर में रमा हुआ है, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः वह सबके बाहर में स्थित है। अब ये सब विरोधी गुणों के द्वारा उस आत्म तत्व का वर्णन किया गया है। क्या मतलब है? इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, वैतर्किक प्रणाली। जब कोई विषय बहुत गूढ़ होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, तो वैतर्किक प्रणाली का आश्रय लिया जाता है, प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स के द्वारा उस तत्व को समझाने की चेष्टा की जाती है। एक उदाहरण विज्ञान का, इससे शायद यह बात समझने में अधिक सुविधा हो जाए। वह है जैसे कि कहा जाता है, अब यह जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की गति किसके समान है? वह पार्टिकल है अथवा वेव है। अब यह आया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के समान है अथवा इलेक्ट्रॉन वेव है, क्या है? अब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ठीक पकड़ में नहीं आता, कभी कभी उसमें पार्टिकल के गुण दिखाई देते हैं और कभी कभी उसमें वेव के गुण दिखाई देते हैं, कभी तरंग के समान वह वर्तन करता है और कभी वह कण के समान वर्तन करता है। तब यह कहना अत्यंत कठिन है कि इलेक्ट्रॉन कणात्मक है या तरंगात्मक है, उसमें दोनों गुण दिखाई देते हैं, कभी तो उसमें पार्टिकल का गुण दिखाई देता है, कभी उसमें वेव का गुण दिखाई देता है। तो वैज्ञानिकों ने एक नया शब्द बना दिया, गढ़ दिया, वेविकल। यह इलेक्ट्रॉन कैसा है? वह वेविकल है, तो वेव के भी समान है और पार्टिकल के भी समान है, तो वेव का वेव ले लिया, पार्टिकल का इकल ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, एक नया शब्द गढ़ दिया, तो पार्टिकल भी है और वेव भी है, वेविकल। यह वैतर्किक प्रणाली है। तो जहां पर वस्तु अत्यंत सूक्ष्म है, जहां पर समझ में बात आती नहीं, तो वहां पर विरोधी गुणों का प्रदर्शन करते हुए विरोधी गुणों के माध्यम से उस वस्तु का विचार किया जाता है, उस वस्तु का वर्णन किया जाता है। तो यहां पर भी यह कहा गया कि आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत गहन, और इसीलिए वैतर्किक प्रणाली का यहां आश्रय लिया गया, इसके विपरीत गुण दिखाए गए, विरोधी गुण दिखाए गए। तो कहा गया अनेजदेकम, भाई उसमें कंपनशीलता नहीं है, ठीक है एक है, वह एक तत्व है, मनुष्योजवीयो वह मन से भी अधिक गतिमान है। तो यह जो मन से भी अधिक गतिमान है, तो इसका मतलब क्या? कहते हैं कि तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत, आत्मतत्व खड़ा है और जो वस्तुएं भाग रही हैं, तो कहते हैं कि वह खड़ा होकर के ही अन्य वस्तुओं को पार कर जाता है। अब इसके लिए आप यदि थोड़ी कल्पना करें ईथर की, जैसे ईथर में जैसे हीट है या इलेक्ट्रिसिटी है ट्रांसमिशन के लिए, तो यह मैग्नेटिज्म है। हम एक ऐसे एक आधार के रूप में, सबस्ट्रेटम के रूप में कल्पना करते हैं। ईथर तो वैसे कुछ है नहीं, परंतु पहले कल्पना की गई कि कोई एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके कारण से यह सब संचरित होता है। तो ऐसी अगर आप कल्पना करें कि ठीक है ईथर के समान, तो यहां पर सब वस्तुएं भाग रही हैं। भाग रही कहां? भाग रही आत्मा में ही भाग रही है। आत्म तत्व तो सबके भीतर में भिड़ा हुआ है और भाग रही है, इंद्रियां उसे पकड़ना चाहती हैं। तो इंद्रियां पकड़ना चाहती हैं, तो पकड़ना चाहती हैं किसकी शक्ति से? शक्तिमान बनकर। आखिर आत्म तत्व की ही शक्ति है। तो कोई नेत्र इंद्रियां पकड़ना चाहती हैं, जैसे चक्षुर इंद्रिय है, आत्म तत्व को मैं देखूंगी, तो वह आत्म तत्व तो पहले ही गया हुआ है। यदि आत्म तत्व न हो तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर पाएगी। आत्म तत्व की विद्यमानता के कारण यहां पर हर वस्तु काम करने में समर्थ होती है। तो इसको इस ढंग से व्यक्त किया गया कि मन से भी अधिक गतिमान है। मन से भी अधिक गतिमान का मतलब कि मन खूब जोरों से दौड़ा कि मैं आत्म तत्व को पकड़ लूंगा। जाकर के देखता है कि आत्म तत्व पहले से मौजूद है। जहां तक मन जाएगा, आत्म तत्व तो वहां पर विद्यमान है ही। तो इसी को यहां पर फिगरेटिव लैंग्वेज में एक रूपक के माध्यम से हमारे समक्ष रखने की चेष्टा की गई है कि मन से भी अधिक गतिशील है। वैसे यह जो थॉट, जिसको कहेंगे कि करंट है, थॉट फोर्स है, उसको बहुत गतिशील माना जाता है। मन की गति को एक तो जैसे थॉट फोर्स या विचार की जो शक्ति है या विचार की जो गति है, उस गति को लाइट की गति से भी अधिक मानते हैं कि ये लाइट से भी अधिक सूक्ष्म है, प्रकाश से अधिक सूक्ष्म है। और नर्व फोर्स से तो अधिक सूक्ष्म है ही। नर्व फोर्स का मतलब, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंगूठे में कहीं पर कोई चोट लगी, अब यहां ब्रेन में जाना है, चोट की संवेदना वहां जाती है, तो कैसे जाती? ये जो चोट की संवेदना जाती है और ब्रेन, मान लीजिए मेरी ऊंचाई है 6.5 फुट, तो लगभग 6 फुट की दूरी हो गई यहां पर अंगूठा और यहां पर ब्रेन में स्थित वह सेल, और चोट की संवेदना अंगूठे से लेकर के यहां तक जाएगी तो कितना समय लेगी? तो कहा गया है कि 0.01 सेकंड, इतना समय लगेगा वह जो संवेदना है यहां से अंगूठे से लेकर के संवेदना पहुंचे यहां पर मस्तिष्क स्थित उस केंद्र में जो 6 फुट की दूरी पर अवस्थित है, तो लगभग 0.01 सेकंड ऐसा लगेगा। पर यह जो थॉट फोर्स है वह तो कितनी गुना, माने वह तो माने इससे तो अधिक। यह जो हमने कहा कि नर्व की जो संवेदना है, संवेदना की जो गति है, उससे अधिक तो जेट प्लेन की गति होती है। 0.01 सेकंड में 6 फुट जाना, यह तो कोई विशेष बात नहीं है। तो यह तो हुआ नर्व की गति, संवेदना की गति, और यह जो विचार की गति है उससे भी सूक्ष्म, और विचार की गति प्रकाश से भी सूक्ष्म और प्रकाश की गति से भी ज्यादा। तो ऐसे मन की गति से भी अधिक गतिमान यह आत्म तत्व है, यह बताया गया केवल वही वैतर्किक प्रणाली से। तो फिर इसे समझने की चेष्टा करें, वह कंपनशील नहीं है, उस प्रकार का कंपन नहीं है, परंतु वह मन से भी अधिक गतिशील है। इसका मतलब कि मन जहां जाता है वहां जाकर के देखता है आत्म तत्व पहले से ही अवस्थित है। आत्म तत्व की विद्यमानता के कारण मन का वहां पर पहुंच पाना संभव होता है। और उसी प्रकार ये जब इंद्रियां, ये देवता, ये इंद्रियां जब पकड़ने के लिए जाती हैं आत्म तत्व को, तो इंद्रियां देखती हैं कि जहां तक वे पहुंच पाई हैं, आत्म तत्व तो आगे ही निकला हुआ है कि आत्म तत्व को ये इंद्रियां पकड़ नहीं पाई, यह कहा गया। और इसी को भिन्न भिन्न भाषा में रखा, अवांग मनस गोचर इत्यादि जो कहा गया है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति नो मनहा, यह हम पढ़ते हैं केनोपनिषद में, वहां पर आंखें नहीं जा पाती, कान नहीं जा पाता, मन नहीं जा पाता। भिन्न भिन्न भाषा में, भिन्न भिन्न वाक्य रचना में इस आत्म तत्व की गूढ़ता को रखा गया है। और श्री रामकृष्ण कैसे हैं, उन्होंने सरल सहज शब्दों में कहा इस आत्म तत्व के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में कहा उन्होंने, देखो रे सारी चीजें दुनिया की झूठी हो गई पर एक ब्रह्म वस्तु झूठी नहीं हो पाई। कोई नहीं बता पाया मुंह से कि ब्रह्म वस्तु कैसी है या ब्रह्म कैसा है। झूठा होने का मतलब, उन्होंने कहा वेद वेदांत शास्त्र सबके सब झूठे हो गए। झूठे का मतलब यह है कि जिसका स्पर्श ओठों से हो जाए वह वस्तु झूठी हो जाती है। तो वेदों को हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने के कारण वेद झूठे हो गए, शास्त्र झूठे हो गए, पर आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि ब्रह्म कैसा है। वह वाणी के सहारे कोई बता नहीं पाया, और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सारी चीजें झूठी हो गई, एक ब्रह्म वस्तु ही ऐसी है जो झूठी नहीं हो पाई, कोई बता नहीं पाया, यह भी कहने का तरीका है। तो यहां पर यह कहा गया कि तद धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत, वह तो तिष्ठत है, चुपचाप स्थिर है आत्मतत्व, और भागती ही चीजों को वह खड़े होकर के ही पार कर लेता है। इसका मतलब कि चीजें उसी में ही तो भाग रही हैं, उसी में ही भागती हैं। जैसे आप देखते हैं पर्दा, सिनेमा का पर्दा है, अब क्या कहेंगे, यह सिनेमा का जो पर्दा है वह खड़ा होकर के ही भागती ही सारी चीजों को पार कर लेता है। अब कितनी चीजें भाग रही हैं पर्दे में, मोटरसाइकिल वाला भाग रहा है, हवाई जहाज वाला भाग रहा है, कितनी चीजें आपको पर्दे में भागती भी दिखाई देती हैं, परंतु यह पर्दा कैसा है, खड़ा है, और खड़ा होकर के सब भागती भी चीजों को पार कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है यह स्थिर है,